एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
संगीत, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य के एक अहम उपन्यास की, बर्नार्ड मेलामट का द असिस्टेंट। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको मतलब अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है।
हाँ बिल्कुल, ये निराशा में उम्मीद की और इंसान के अंदर की अच्छाई बुराई की लड़ाई की कहानी है।
और इसके लेखक बर्नार्ड मेलामट, वो खुद रूसी यहूदी अप्रवासी माता पिता की संतान थे,
जी
ब्रुकलिन में पले बढ़े,
जी
और उन्हें अक्सर सॉल बेलो और फिलिप रॉथ के साथ मतलब उस महान तिकड़ी का हिस्सा मानते हैं यहूदी अमेरिकी साहित्य की।
सही।
उनकी कहानियों में वो तजुर्बे सांस लेते हैं ना, परदेस में पहचान बनाना, गरीबी में जीना,
बिल्कुल।
और ख़ास तौर पर ये सवाल कि क्या इंसान सच में बदल सकता है, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकता है। उनका लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग है, यथार्थवाद तो है पर उसमें कभी कभी मिथक जैसे तत्व भी आ जाते हैं।
हाँ, वो रोजमर्रा की सच्चाइयों में एक गहरा, कह सकते हैं, रूपक जैसा अर्थ भर देते हैं।
और द असिस्टेंट ये उनका दूसरा उपन्यास था, 1957 में आया, इसी से उन्हें खास पहचान मिली।
जी, और इसकी पृष्ठभूमि भी बहुत मायने रखती है। 1950 का दशक, दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ है।
हाँ, वो ब्रुकलिन का माहौल, गरीबी, उदासी और अलग अलग समुदायों में एक तनाव सा भी।
और मेलामट ने ये खुद जिया था, उनके परिवार की भी किराने की दुकान थी, तो ये कहानी बहुत हद तक उनके अपने अनुभवों से निकली है।
तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, किरदारों के उतार चढ़ाव को समझेंगे।
और देखेंगे कि मेलामट असल में हमें क्या बताना चाह रहे हैं।
तो कहानी के माहौल से शुरू करते हैं, वो दुकान, वो गली, कैसा है वो सब?
हाँ, वो माहौल बहुत अहम है। सोचे युद्ध के बाद का ब्रुकलिन, एक दबा हुआ सा मायूस इलाका, और उसी के बीच है मॉरिस बोबर की छोटी सी किराने की दुकान, घाटे में चलती हुई।
दुकान मतलब सिर्फ दुकान नहीं है शायद।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो जैसे कोई अंधेरी धूल भरी कब्र हो या जेल, मेलामट ने ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए हैं। पूरी कहानी इसी घुटन भरी जगह के आसपास घूमती है। ये किरदारों की नाउमीदी का, उनके अंदर के संघर्ष का प्रतीक बन जाती है।
और इसी दुकान में रहता है बूबर परिवार।
जी, मॉरिस बूबर दुकान का मालिक, बूढ़ा थका हुआ पर हद से ज्यादा ईमानदार यहूदी अप्रवासी।
एक ऐसा भला आदमी जिसकी भलाई का दुनिया में कोई मोल नहीं लगता।
बिल्कुल, उसका धंधा ठप होने वाला है। फिर है ईडा बूबर, उसकी पत्नी। गरीबी और चिंता ने उसे थका दिया है। वो मॉरिस जितनी आदर्शवादी नहीं है, ज्यादा व्यावहारिक है, घर चलाने की फिक्र में रहती है।
और उनकी बेटी हेलेन,
हेलेन बूबर, 23 साल की, समझदार, संवेदनशील, सपने देखती है कॉलेज जाने के, बेहतर जिंदगी के।
लेकिन फंसी हुई है।
हाँ, घर के हालात, जिम्मेदारियां, जैसे उसके पंख काट दिए गए हों। पूरे घर में एक अजीब सी घुटन और बेबसी महसूस होती है।
और इसी माहौल में एक रात कुछ होता है, एक हिंसक घटना।
हाँ, वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, एक अपराध से। फ्रैंक अल्पाइन नाम का एक नौजवान है, इटालियन अमेरिकन, थोड़ा आवारा सा। वो अपने साथी वार्ड मिनोक के साथ मॉरिस की दुकान लूटने आता है।
अच्छा।
लूटपाट के दौरान घबराहट में फ्रैंक मॉरिस के सिर पर पिस्तौल की बट मार देता है। और हाथ क्या लगता है? सिर्फ $13।
बस $13?
हाँ, लेकिन ये घटना फ्रैंक को अंदर से परेशान करने लगती है, अपराध बोध। वो दुकान के चक्कर काटने लगता है। फिर एक दिन उसे मौका मिलता है मॉरिस की जान बचाने का, जब दुकान में गैस लीक हो जाती है।
तो वो उसे बचा लेता है।
हाँ, वो उसे बचा लेता है। और फिर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। फ्रैंक अपनी असलियत छुपाता है कि वो लुटेरों में से एक था, और मॉरिस को मना लेता है कि उसे दुकान पर सहायक रख ले, बिना तनख्वाह के या बहुत कम पैसों पर।
और मॉरिस मान जाता है।
मॉरिस मजबूर है, शायद उसे एक मददगार की जरूरत भी है, तो वो मान जाता है। लेकिन ईडा,
विडंबना है, जिसने लूटा वही अब मददगार बन गया।
हाँ, यहीं से फ्रैंक एल्पाइन का वो सफर शुरू होता है जो इस उपन्यास का दिल है,
प्रायश्चित का सफर। और वो बड़ा सवाल, क्या इंसान सच में बदल सकता है? फ्रैंक का किरदार है भी बड़ा पेचीदा, अनाथ, छोटे मोटे अपराधों का इतिहास।
जी, पर उसके अंदर कहीं एक अच्छी जिंदगी की चाहत भी है, लेकिन उसकी आदतें, उसकी फितरत उसे खींचती हैं।
तो ये शागिर्दी का दौर कैसा रहता है उसका? वो दुकान में काम करता है लेकिन।
हाँ, ये दौर विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ वो खूब मेहनत करता है, दुकान की हालत भी सुधरती है, वो मॉरिस की खामोशी, उसकी ईमानदारी देखता है, शायद कुछ सीखता भी है।
लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ उसकी वो पुरानी आदत नहीं जाती, वो रोज गल्ले से कैश रजिस्टर से पैसे चुराता है।
ओह, और खुद को क्या दिलासा देता है?
यही कि ये उसकी बकाया तनख्वाह है, मतलब खुद को सही साबित करने की कोशिश।
और हेलेन, उसके प्रति भी उसका आकर्षण बढ़ता है।
हाँ, बहुत गहरा आकर्षण। वो हेलेन की समझदारी से प्रभावित है। उसे लगता है कि हेलेन जैसी लड़की के काबिल बनने के लिए उसे बदलना होगा।
तो वो क्या करता है?
वो चोरी छुपे हेलेन की लाइब्रेरी की किताबें पढ़ता है, टॉलस्टॉय, डॉस्टोव्स्की, ताकि वो हेलेन को समझ सके।
ये तो काफी दिलचस्प है।
उनके बीच बातें होती है, वो सिनेमा जाते हैं, एक बहुत नाजुक सा रिश्ता बनता है। पर फ्रैंक के अंदर का चोर और उसका गुस्सा, वो इस रिश्ते पे भी भारी पड़ता है।
ये जो फ्रैंक के अंदर की लड़ाई है, अच्छा बनने की कोशिश और फिर बेईमानी कर देना, ये कहानी में एक तनाव पैदा करती है ना?
बिल्कुल। मेलामोड ये नहीं दिखाते कि बदलाव आसान है, ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। इंसान गिरता है, फिर उठता है।
ये बदलाव की संभावना और उसकी मुश्किलों को बहुत ईमानदारी से दिखाता है। अच्छा, अगर हम किरदारों पे वापस आएं, तो मॉरिस बोबर, वो तो जैसे कहानी की नैतिक रीढ़ है।
मॉरिस बोबर, हाँ, वो उपन्यास का नैतिक केंद्र है, जैसे बाइबल के अय्यूब हो, बिना शिकायत दुख झेलने वाला, दुनिया की नजर में असफल, पर उसकी ईमानदारी, उसकी करुणा अडिग है।
वो यहूदी होने को कैसे देखते हैं?
वो उसे सिर्फ रस्मों से नहीं जोड़ते। वो फ्रैंक को कहते हैं, यहूदी होने का मतलब है कानून के लिए दुख उठाना, मतलब सही काम करने के लिए तकलीफ सहना।
पुरानी दुनिया के मूल्य
है ना,
दुख में भी गरिमा।
जी, फ्रैंक के साथ उनका रिश्ता भी गहराता है, बाप बेटे जैसा। उनका धीरे धीरे टूटना और आखिर में मौत, बहुत मार्मिक है।
और फ्रैंक, वो मॉरिस के साये में कैसे बदलता है? उसका सफर आसान तो नहीं लगता?
फ्रैंक की कहानी है दर्द और सेवा के जरिए खुद को खोजने की। मॉरिस की अच्छाई, हेलेन का प्यार, ये उसे प्रेरणा देते हैं।
पर ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है।
हाँ वही,
वो लड़ता है अपनी आदतों से, लालच से, गुस्से से।
उसका पैसे चुराना, फिर हेलेन के साथ वो जो करता है पार्क में, ये दिखाता है कि बदलाव कितना मुश्किल है।
यही उसे असली बनाता है। वो गिरता है बुरी तरह, लेकिन शायद मॉरिस की मौत उसे वो आखिरी धक्का देती है।
हाँ, लगता तो यही है, वो ना सिर्फ दुकान संभालता है, बल्कि मॉरिस की नैतिक जिम्मेदारी भी उठा लेता है,
यहाँ तक कि धर्म भी बदल लेता है।
जी, वो उसके अंदरूनी बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है।
और हेलेन, उसकी अपनी क्या लड़ाई चल रही है?
हेलेन उस जवान पीढ़ी जैसी है जो परिवार और अपने सपनों के बीच फंसी है, पढ़ना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है,
लेकिन हकीकत कुछ और है।
हाँ, और उसका अतीत भी उसे परेशान करता है। मर्दों पर उसका भरोसा आसानी से नहीं बनता,
इसीलिए फ्रैंक के साथ उसका रिश्ता इतना उलझा हुआ है।
बिल्कुल, खिंचाव भी है, शक भी, डर भी, और जब फ्रैंक पार्क में उस पर हमला करता है,
वो तो सब खत्म कर देता होगा।
हाँ, उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। वो फ्रैंक को माफ नहीं कर पाती, लेकिन अंत तक आते आते शायद वो फ्रैंक के बदलाव को समझने लगती है। स्वीकार नहीं, पर समझ।
और इडा बोबर, वो मॉरिस के बिल्कुल विपरीत लगती हैं, ज्यादा यथार्थवादी।
हाँ,
इडा जमीन पर है, मॉरिस उसूलों की बात करते हैं, इडा को रोटी की फिक्र है।
वो फ्रैंक को हमेशा शक से देखती हैं, एक तो गैर यहूदी, दूसरा बेटी के लिए खतरा।
वो हमें गरीबी का दबाव और पारंपरिक पहचान की चिंताएं दिखाती हैं।
पर दिलचस्प यह है कि आखिर में वो भी हिचकते हुए इसे ही फ्रैंक को स्वीकार कर लेती है। ये भी फ्रैंक के बदलाव की गवाही है।
और एक छोटा सा जिक्र वार्डमिनॉग का भी होना चाहिए, फ्रैंक का वो साथी।
हाँ, वार्डमिनॉग, वो जैसे फ्रैंक का अंधेरा पक्ष है, वो रास्ता जिस पर फ्रैंक भी जा सकता था। उसमें बदलाव की कोई उम्मीद नहीं दिखती, वो नफरत और अपराध में ही फंसा रहता है। वो दिखाता है कि फ्रैंक का चुनाव कितना महत्वपूर्ण था।
कहानी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो चौंका देते हैं। कौन से वो मोड़ हैं जिन्होंने कहानी की दिशा बदल दी?
दो वाक्य खास हैं। पहला तो पार्क में हेलेन पर हमला, फ्रैंक उसे वार्ड से बचाता है, हीरो बनता है।
और फिर
अगले ही पल अपने अंदर के आवेग में वो खुद हमला कर देता है। ये भयानक विश्वासघात है, हेलेन का भरोसा चकनाचूर हो जाता है।
ये तो बहुत बुरा हुआ। और दूसरा?
दूसरा तब जब मॉरिस को पता चलता है कि फ्रैंक दुकान से पैसे चुराता रहा है।
ओह, मॉरिस का दिल टूट गया होगा।
हाँ, उसे फ्रैंक से उम्मीदें होने लगी थी, वो उसे नौकरी से निकाल देता है। फ्रैंक फिर अकेला, शर्मिंदा।
इन दोनों घटनाओं का असर क्या होता है?
फ्रैंक के प्रायश्चित का रास्ता तो और मुश्किल हो गया होगा।
बिल्कुल, ये उसे बिल्कुल नीचे गिरा देती है, हेलेन का तिरस्कार, मॉरिस के भरोसे का टूटना।
ऐसा लगता है जैसे वापसी के रास्ते बंद हो गए।
हाँ, प्रायश्चित का रास्ता जो पहले ही कठिन था, अब नामुमकिन सा लगता है। यही मेलामोड का यथार्थवाद है, बदलाव जादू से नहीं होता।
और फिर कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है, मॉरिस की मौत। जी, कड़ाके की सर्दी है, मॉरिस सुबह दुकान के बाहर बर्फ हटा रहा है, जैसे अपनी जिंदगी भर की जिम्मेदारी निभा रहा हो। उसे ठंड लग जाती है, निमोनिया हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
उसका शरीर शायद और बोझ नहीं सह पाया।
हाँ, उसके अंतिम संस्कार में हेलेन का पूर्व प्रेमी नैट पर्ल एक भाषण देता है और अजीब तरह से वो मॉरिस को एक सच्चा यहूदी कहता है।
रस्मों की वजह से नहीं,
नहीं बल्कि इसलिए कि वो ईमानदार था, दूसरों के लिए दुख उठाता था। ये शब्द हेलेन और फ्रैंक दोनों के लिए जैसे एक रहस्य उद्घाटन होते हैं। उन्हें मॉरिस के जीवन का नैतिक वजन समझ आता है।
मॉरिस की मौत के बाद क्या होता है, फ्रैंक क्या करता है?
मॉरिस की मौत फ्रैंक के लिए एक निर्णायक मोड़ है। अब उसका प्रायश्चित सिर्फ अंदरूनी नहीं रहता, वो एक जिम्मेदारी बन जाता है। वो दुकान संभालता है, उसी तरह मेहनत करता है जैसे मॉरिस करता था, तपस्वी की तरह जीता है।
जैसे मॉरिस का बोझ उठा लिया हो।
हाँ, वो इडा का ख्याल रखता है, चोरी छुपे हेलेन की कॉलेज फीस भी देता है
और यहूदी धर्म के बारे में पढ़ता है।
जी, जैसे वो मॉरिस की विरासत को पूरी तरह अपनाना चाहता हो।
और अंत में वो यहूदी बन जाता है।
हाँ, वो औपचारिक रूप से यहूदी धर्म अपना लेता है, खतना की पीड़ा सहकर। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये उसका मॉरिस की जगह लेना है नैतिक स्तर पर। उस आवारा फ्रैंक की यात्रा यहाँ पूरी होती है, जो दुख और सेवा से एक निस्वार्थ रक्षक बन जाता है,
एक तरह का सेक्युलर संत।
हाँ, कह सकते हैं।
ये कहानी इतने सारे विषयों को छूती है, अगर समेटना हो तो मुख्य संदेश क्या है? वो दुख उठाने वाली बात।
हाँ, वो केंद्र में है, पीड़ा के माध्यम से प्रायश्चित। सच्चा बदलाव कीमत मांगता है, सक्रिय कष्ट सेना पड़ता है। फ्रैंक मॉरिस का बोझ उठाता है। उपन्यास में वो सोचता भी है, अगर आदमी चाहे और कीमत चुकाने को तैयार हो तो बदलने में देर नहीं होती।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है यहूदी पहचान और सार्वभौमिक नैतिकता का मुद्दा। मॉरिस के लिए यहूदी होना एक नैतिक जिम्मेदारी है।
सही कहा, फ्रैंक का धर्म बदलना भी उसी गहरी सार्वभौमिक नैतिकता को अपनाना है।
और अप्रवासी अनुभव, वो अमेरिकी सपने का सच।
हाँ, बोबर परिवार की कहानी उस अमेरिकन ड्रीम की असलियत दिखाती है। ईमानदारी अक्सर पैसे के सामने हार जाती है, दुकान कैदखाना बन जाती है।
मॉरिस का वो ख्याल कि उसने जीवन व्यर्थ गवा दिया,
दिल दुखाने वाला है, पर अंत में लगता है व्यर्थ नहीं गया, उसकी अच्छाई ने फ्रैंक को बदल दिया।
और परिवर्तन की संभावना, फ्रैंक की मुश्किल यात्रा ये दिखाती है।
साथ ही पीड़ा एक नैतिक शिक्षक के रूप में, मॉरिस और फिर फ्रैंक दोनों दुख से सीखते हैं।
इंसान दुख उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, पर जब वो दुख उठाता है तो इंसान बनना सीख सकता है।
क्या खूब कहा। और फिर प्रेम और जिम्मेदारी, विश्वास और विश्वासघात, फ्रैंक हेलेन के रिश्ते में ये सब है।
और बंधन और मुक्ति भी, दुकान, गरीबी, अतीत, सच्ची आजादी शायद जिम्मेदारी कबूल करने में है।
बिल्कुल, जैसा फ्रैंक को मिलती है।
मैलमेट का लिखने का तरीका भी, वो किरदारों के अंदर कैसे ले जाते हैं हमें, वो हमें फ्रैंक मॉरिस हेलेन के नजरिए से दिखाते। ज्यादातर हम उनके विचार, डर, अपराध बोध सब महसूस करते हैं।
भाषा बहुत सधी हुई है, कम शब्दों में ज्यादा असर।
और प्रतीक, वो दुकान, कैश रजिस्टर, किताबें।
हाँ, मौसम का बदलना भी, सर्दी से वसंत तक, ये सब कहानी को गहराई देते हैं।
इस उपन्यास को पढ़कर या सुनकर कैसा महसूस होता है? हल्का तो नहीं लगता?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उदासी है, दर्द है, पर उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है, बहुत मुश्किल से हासिल की हुई। ये किरदारों के संघर्ष, उनकी गरिमा, उनके नैतिक साहस का बहुत सच्चा चित्र है।
क्या चीज पाठक पर सबसे ज्यादा असर छोड़ती है?
मेरे ख्याल से मॉरिस की खामोश वीरता, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली कामयाबी क्या है।
और फ्रैंक की यात्रा उम्मीद भी देती है, पर याद दिलाती जो बदलना कितना मुश्किल है।
ये उपन्यास हमें नैतिक दुविधाओं, पैसे और उसूलों के बीच चुनाव, जिंदगी के सही मायने, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है।
यह हमें अच्छाई के छोटे अनदेखे कामों की कद्र सिखाता है।
बिल्कुल।
तो अंत में हम कह सकते हैं कि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नैतिक बदलाव बहुत कठिन है, पर नामुमकिन नहीं।
हाँ, अगर इंसान कीमत चुकाने को तैयार हो, और ये भी कि सबसे साधारण जिंदगी में भी असाधारण गरिमा और मतलब हो सकता है, अगर रास्ता जिम्मेदारी और करुणा का हो।
संगीत, यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।